श्रील प्रभुपाद की जय। राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, तीरावन प्यारी, यमुना तीरावन प्यारी, यमुना तीरावन प्यारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, नंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, तीरावन प्यारी, यमुना तीरावन प्यारी, यमुना तीरावन प्यारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama Rama Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama Rama Ram Hare 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 Prabhupada
శ్రీ ప్రభుపాదికి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాదీ పాశ్చాత్య దేశ తారిణే జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార శ్రీవాసాది శ్రీ గౌర భక్త వృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. తో హాలి మే శివరాత్రి కా దివస్ బితా తో హమ్నే యే విచార్ కియా కి ఆజ్ కుచ్ హమ్ మహాదేవ్ కే విషయ మే చర్చా కరెంగే. महादेव के लिए ज्यादा वोट गिर रहा है क्योंकि भोले हैं. तो कभी कभी भौतिकवादी लोग ये सोचते हैं कृष्ण भक्ति से ज्यादा आसान महादेव की भक्ति है क्योंकि भोलेनाथ है, जो भी मांगो दे देंगे. और कृष्ण बड़े परीक्षा लेते सुदामा की तरह तो बड़ा समय लगता है. तो लोग इस बात को ठीक से नहीं समझ पाते कि वास्तविक किस भाव से किस आधार से महादेव के पास हमें याचना और प्रार्थना करनी चाहिए. महादेव को समझने के लिए हमें शास्त्र चक्षु की आवश्यकता है. जब तक हम इस दिव्य चक्षु से नहीं देखेंगे तब तक हम महादेव के प्रति अपराध करने की संभावना बनी रहेगी. खास करके जब कोई पहली बार जब हरे कृष्णा में जब हरे कृष्णा आंदोलन में आना शुरू करता है तो जब उन्हें यह सुनाई पड़ता है कि कृष्ण भगवान है तो अन्य देवी देवताओं के प्रति वो अवहेलना करने लगता है. ये सब छोटे मोटे देवी देव, मेरा कृष्ण. तो वो अन्य देवताओं के प्रति अपराध कर देता है मगर ये समझ नहीं पाता है कि उनका क्या स्थान है. स्वयं ब्रह्मा जी महादेव के विषय में चर्चा करते हुए वर्णन करते हैं कि महादेव का क्या स्थान है. महादेव एक ऐसा स्थान है जो जीव तत्व भी नहीं है ना ही विष्णु तत्व है. जीव तत्व में 50 गुण है, विष्णु तत्व में 60 गुण है और महादेव के अंदर 55 गुण है. वैसे महादेव जो शिव तत्व के रूप में जाने जाते हैं, इनके विषय में ब्रह्मा जी इस प्रकार प्रार्थना करते हुए कहते हैं क्षीरम यथारति विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततत् प्रतखस्ति हेतु यसंबुदम् अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंद मारि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उस गोविंद की आराधना करता हूं जो स्वयं जिनके आराधना हम सब कर रहे हैं। स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं मैं स्वयं उनकी आराधना करता हूं, उस गोविंद की आराधना करता हूं जो स्वयं गोविंद महादेव के रूप को धारण करते हैं। तो उदाहरण देकर समझाते हैं, क्षीरम यथा दधि, जिस प्रकार क्षीरम यानी कि दूध, दधि यानी दही, दूध दही में बदल जाता है कब? क्षीरम यथा दधि विकार, जब उसमें विकार डाल दिया जाता है तब। ठीक इसी तरह महाविष्णु स्वयं भगवान नारायण प्रकृति के तीन गुण रूपी विकार को जब धारण करते हैं और उनको धारण करके स्वयं विष्णु स्वयं महादेव के रूप में प्रकट होते हैं, तो ये भी नहीं समझना चाहिए कि ठीक है तो विष्णु ने ही शिव का रूप धारण किया तो विष्णु और शिव एक हुआ, नहीं। अब यहां पर हम उसी उदाहरण को लेंगे, जैसे दूध दही में बदलता है, लेकिन दही कभी दूध बनता है? दूध से जो बना हुआ जो भी कुछ पकवान जो दूध से बनता है वो दही से बन सकता है क्या? नहीं, ऐसा कदाचित तो नहीं हो सकता। इसीलिए नारायण स्वयं जो कार्य करते हैं उस कार्यों को महादेव कभी नहीं कर सकते, इसलिए स्वयं भगवान नारायण ने महादेव का जो रूप धारण करके उन्होंने एक विशेष कार्य को संपन्न किया, और वो कार्य क्या है? इस संसार को प्रलय में डुबो देना। तो महादेव का एकमात्र यही हेतु है कि किस प्रकार हर व्यक्ति, हर एक जीव आत्मा भगवान कृष्ण का या नारायण का भक्ति करे, यही उनका एकमात्र हेतु है। और इसीलिए ऐसे कहा जाता है कि उस इको ज्यादा है, आप लोग को आवाज क्लियर आ रहा है? इको कम करना चाहिए। कोई है क्या वहां पे? देखिए आप सिक्योरिटी, आप कुछ करिए मत, जाकर उधर पूछिए, आप कुछ बटन मत दबाइए। हरे कृष्ण। हाँ, तो वही स्वयं महादेव जो कोई, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, वही महादेव स्वयं जो कोई वाराणसी में या बनारस में जो कोई अपने देह को त्यागता है तो स्वयं महादेव उनके कानों में जाकर राम का नाम उच्चारण करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि वाराणसी में जो कोई अपने देह को त्यागता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि निरंतर महादेव निरंतर राम के भजन में तलीन है। एक समय पार्वती ने पूछा कि ये महादेव आप इतना किनका ध्यान करते हो, आपको भी किसी का ध्यान करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? महादेव ने कहा निश्चित। तो क्या करते हो? तो कहने लगे श्री राम रमे रमेति सहस्त्र नाम तद तुल्यम। कहने लगे कि मैं निरंतर प्रभु राम का नाम जप करता हूं, और वो राम का नाम जो विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर माना गया है, जो तीन बार जो विष्णु सहस्त्र नाम जप करता है वो केवल एक राम के नाम के जप से परिपूर्ण हो जाता है। तो वैसे भगवान प्रभु राम के नाम में इतनी शक्ति है और इतना उनकी महिमा है कि स्वयं महादेव तक उस नाम को जप करने के लिए आतुर है। और इसीलिए महादेव कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं करते। जो उनके गले में जो मुंड की माला है वो किसी और की नहीं, स्वयं पार्वती का ही है। पार्वती समय समय पर अपने देह को छोड़ती है, तो उस देह को छोड़ने के बाद उसी देह के मुंड को लेकर महादेव अपने गले में वरमाला के रूप में पहन लेते हैं। अब ये बात पार्वती को खबर नहीं था। एक समय की बात थी कि नारद मुनि आए पार्वती के पास और वो कहने लगे कि हे देवी, क्या आपको पता है कि आपके प्रभु जी के गले में जो वरमाला है, आपके स्वामी के गले में जो वरमाला है, जो मुंड की माला, वो किसकी है? तो यहां पर महादेव ने कहा, इस प्रकार का प्रश्न तुम्हें कौन पूछा? अब नारद मुनि ने पहले कह दिया था कि मेरा नाम मत बोलना, क्योंकि नारद मुनि का कुछ ऐसे ही रोल होता है। तो इन्होंने कह दिया, नहीं नहीं मुझे पूछना है। तो महादेव ने पूछा कि नारद मुनि आए थे क्या मिलने? बोला आए थे। हाँ तो समझ गए। तो महादेव समझ गए कि यह नारद मुनि का ही काम है। महादेव ने कहा कि वो देवी वो किसी और का नहीं, तुम्हारा ही है। जैसे ये कहा तो एक क्षण के लिए पार्वती थोड़ी हक्की बक्की हो गई। वो कहने लगे, ऐसे कैसे, मैं इतनी बार मर रही हूं और तुम्हें मरण आ ही नहीं रहा? तब महादेव कहने लगे, क्योंकि मैं निरंतर प्रभु राम के अमृत में डुबो कर रहता हूं, इसी कारण से मेरे जीवन में कभी मृत्यु नाम की चीज आती नहीं है। इसलिए कहा गया है कि ये जो राम का नाम जप जिसने कर लिया, वो वास्तविकता में अपने जीवन में सच्चाई को जान लिया। जिसी बात को आप लेकर, जैसे हम देखते हैं मृत्यु के समय पर भी राम का नाम उच्चारण करते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इसी बात को कहते हैं कि राम का नाम सत्य है, मगर तत्पर भी आज के तारीख में इस नाम को भी जप करने के लिए लोग शर्मा रहे हैं। लोग मृत्यु के समय पर भी यह बोलने को तैयार नहीं है। यहां तक कि हम कुछ वर्ष कुछ महीने पहले रत्ननाथ प्रभु के गांव में गए थे, जहां पर जब उस कथा में जब उनके पिता का जब देहांत हुआ, तो उस देहांत के बाद सभी लोग आए थे उनके पिता के लिए अंतिम संस्कार की तैयारी कर जब लेकर जा रहे थे, तब मैंने सबको कहा कीर्तन करो, कीर्तन में कोई भाग नहीं ले रहे, हरे कृष्णा कीर्तन में कोई भाग नहीं ले रहे। मुश्किल से एक दो जन थे और वही मेरे साथ जप कर रहे थे। बाकी किसी को ऐसे महसूस हो रहा था कि ये राम का नाम जप करना मतलब मेरे योग्यता के बाहर है, ये केवल वो मूर्ख लोग ही इस नाम का जप करते हैं। मगर कीर्तन में तो भाग नहीं लिए, कीर्तन में तो ताली नहीं बजाए, लेकिन उसके लिए खूब ताली बज रहा था। तो यह है आज के तारीख में लोगों की स्थिति। अब इसी राम नाम सत्य, इसी बात को आप किसी बर्थडे पार्टी में या मैरिज पार्टी में आप जोरदार बोलिए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो होगा यूं कि आपका ही नंबर लग जाएगा। बंद करो ये बकवास। और इसी बात को शिक्षा दे रहे स्वयं महादेव की, हमें निरंतर राम का नाम जप करना चाहिए। ऐसे स्वयं महादेव अपनी जीवन के चरित्रों में शिक्षा दे रहे हैं। मगर लोग इस बात को भूल कर बैठते हैं और ये सोचते हैं कि महादेव ही सबके स्वामी हैं। उसे समझना चाहिए, ये बहुत कच्ची डोरी है। रामायण में जहां पर वर्णन आता है कि जब महादेव अपने वाहन में बैठकर अपनी अर्धांगिनी सती के साथ जब जा रहे थे, तो जाते हुए उन्होंने एकाएक देखा कि प्रभु रामचंद्र जी भूमि में अपने नरलीला कर रहे हैं। तो तुरंत ही वहां पर महादेव अपने वाहन से उतरे और तुरंत ही उन्होंने प्रभु राम को प्रणाम किए। सती ने पूछी कि आप किनको प्रणाम कर रहे हो? तो महादेव ने कहा, जरा नीचे देखो, स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक जो सबके स्वामी हैं, वो नीचे नरलीला कर रहे हैं, उसी प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। अब पार्वती या सती को यह बात समझ में नहीं आए, तो सती ने कहा, नहीं नहीं मैं पहले परीक्षण करूंगी कि यही स्वयं भगवान है क्या। स्वयं सती पृथ्वी में आई और पृथ्वी में आकर उन्होंने देखा कि ये तो किसी अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। तो स्वयं सती ने सीता का रूप धारण किया और सीता का रूप धारण करके प्रभु रामचंद्र जी के सामने खड़ी हो गई। अब यहां पर प्रभु रामचंद्र जी अपनी लीलाओं में ये इस लीला को दर्शा रहे कि अब वो सीता के वियोग में रो रहे। प्रभु रामचंद्र जी कभी लताओं को पूछते कहाँ है मेरे सीते, तो कभी भूमि को, कभी अंबर को, कभी हवाओं को पूछते हैं कि कहाँ गई सीता। अब उसी के रूप में यहाँ पर सती सामने खड़ी है, मगर प्रभु राम जिस बात से अवगत थे उन्होंने अपने रास्ते को ही घुमा दिया। तो वहां पर सती पुनः गायब होकर पुनः उनके रास्ते के सामने आ गई, तो प्रभु राम ने तीसरा रास्ता पकड़ लिया। अब वो तीसरे रास्ते में भी आ गए तो प्रभु राम ने चौथा रास्ता पकड़ लिया। लेकिन जब बार बार आने लगी तब प्रभु रामचंद्र जी समझ गए ऐसे मानने वाली नहीं है। तो प्रभु रामचंद्र जी ने कहा, माते अकेली आई है, कहाँ है आपके प्रभु? अब तो सती पूरी तरह लज्जित हो गई, चरणों पे गिर गई, हे प्रभु रामचंद्र जी मुझे क्षमा कर दो, अब मुझे पता लग गया आप ही स्वयं भगवान हो, मैंने गलती कर बैठी। बोला कोई बात नहीं। अब जब वापस जब सती आई तो महादेव ने कभी उनको पत्नी के रूप में नहीं स्वीकारा। तो सती ने पूछा, मुझसे क्या ऐसी गलती हो गई? बोला नहीं, तुमने मेरी माँ सीता का रूप धारण किया, इसलिए अब तुम उसी देह के द्वारा मैं तुम्हें कभी पत्नी के रूप में नहीं स्वीकारूंगा। और इसीलिए सती ने उस देह को परित्याग करके फिर पार्वती के रूप में आई। इस तरह स्वयं महादेव अपने जीवन में दिखा रहे कि उनका भगवान प्रभु राम के प्रति उनका कितना समर्पण है। तो इसलिए महादेव को कहा गया वैष्णो नाम यथा शंभु, वैष्णवों में भी सर्वश्रेष्ठ, सारे वैष्णवों का मुख्य सरदार, सारे भक्तों का मुख्य व्यक्ति जो है वो है महादेव। प्रश्न यह उठता है कि अगर स्वयं भगवान राम के भक्त अगर महादेव है तो वो हुए वैष्णव, तो वैष्णव हुए तो वैष्णव का आभूषण होना चाहिए, उनके तो आभूषण कुछ, उनके आभूषणों का तो कोई ठिकाना नहीं, पूरे शरीर में इस प्रकार भस्म लगाए हैं, ना ही कंठी माला है ना ही तिलक है, तो कैसे वो वैष्णव हुए? तो वैष्णव का कुछ आभूषण भी होता है, तो ऐसे क्यों? ये पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है कि महादेव का इस प्रकार का वेशभूषा क्यों धारण हुआ है। एक समय की बात थी कि पार्वती ने पूछा है, हे महादेव पाषंडी कौन है, मुझे इसके विषय में जरा बताइए। तो महादेव कहने लगे, पाषंडी वो है जो अपने शरीर में भस्म लगाता है। पार्वती थोड़ा चकित हो गई, पाषंडी वो है जो धटाधारी है, पाषंडी वो है जो गले में सर्प लटकाता है, पाषंडी वो है जो पशु का खाल पहनता है। अब ये सब सुनकर पार्वती अब हैरान हो गई। अंत में महादेव ने कहा, पाषंडी का संगति कभी मत करना। अब तो रहा नहीं गया, पार्वती ने सीधा पूछ लिया कि ये आप क्या कह रहे हो, जो भी कह रहे हो सब मुझे आपके अंदर दिख रहा है। तब महादेव कहने लगे कि ये जो मेरा वेशभूषा जो है, ये वास्तविकता में पाषंडी वेशभूषा है। महादेव का जो वेशभूषा जो है पाषंडी वेशभूषा है। इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे ये कारण है। तब वहां पर वर्णन करते हैं, एक समय की बात थी कि जितने भी भूत पिशाच गण जितने भी थे, जितने भी असुर गण थे, ये सभी लोग ने स्वर्ग में आक्रमण कर दिए। अब महादेव का एक नाम है भूतनाथ। भूतनाथ यानी कि सारे भूत पिशाचों का स्वामी, उनके मेन कंट्रोलर। तो अब जितने भी भूत पिशाच थे तो स्वामी जैसे है वैसे ही रहेंगे, क्योंकि स्वामी वैष्णव आभूषण में थे। तो जितने भी भूत पिशाच थे वो भी तिलक वगैरह लगाया करते थे। अब इन्होंने स्वर्ग में जब आक्रमण कर दिया तो स्वर्ग के सारे लोग, देवी देवतागण परेशान होकर वहां से निकलकर भाग गए, क्योंकि उनकी शक्ति काफी अतूत शक्ति बन गई थी, जिस शक्ति के सामने देवगण टिक नहीं पाए। परेशान होकर निठल्ले इधर उधर भटकते भटकते आ गए नारायण के पास, और नारायण को आकर कहने लगे कि हे भगवंत, हमारी रक्षा करो। स्वर्ग में महादेव के चेले लोग ने आक्रमण कर दिया है, आप कुछ करिए। नारायण ने कहा, चिंता मत करो, मेरा सुदर्शन सारा काम कर लेगा। अब जब सुदर्शन आया स्वर्ग में, तो स्वर्ग में आकर सबका सुदर्शन करके प्रणाम करके चला गया। अब नारायण ने पूछा सुदर्शन को, काम किया? सुदर्शन ने कहा, नहीं नहीं किया। क्यों? अब मैं कैसे करूं? जितने भी लोग वहां पर है वो सब आपके विष्णु चिन्ह लगाकर बैठे हैं, और उस विष्णु चिन्ह जो धारण किया उनको मैं कैसे मारूं? तब नारायण समझ गए, सारी समस्याओं का मुख्य जड़ है महादेव। तो नारायण ने कहा, महादेव? तो महादेव ने कहा, यस बॉस, कुछ ऐसी कहा, क्या आज्ञा? तो उन्होंने कहा, आज के बाद ये जो आभूषण है, इस आभूषण को तुम बदल दो, तिलक छोड़कर भस्म लगाओ, कंठी माला निकाल के सर्प लटका दो, धोती कुर्ता हटाकर जानवर के खाल पहन लो, और वरमाला हटाकर खोपड़ी की माला पहन लो, अब शरीर में बिच्छू भी लटका दो। ये जब शीका हटाकर झटाधारी बन जाओ। ये जब कहा तो महादेव ने कहा, तो मेरी भक्ति का क्या होगा? तो महादेव को नारायण कहने लगे, चिंता मत करो, तुम्हारे भक्ति का संरक्षण मैं स्वयं करूंगा, तुम उसका तनिक भी चिंता मत करो। और नारायण की आज्ञा का पालन करते हुए महादेव ने अपने आभूषण को बदल दिया। जब महादेव ने अपने आभूषण को बदला तो एक हल्ला मच गया भूत पिशाच के इधर। मार्केट में नया फैशन आया, हमारे सरदार ने स्टाइल बदल दिया है, अब ये थोड़ा ज्यादा ही अट्रैक्टिव लग रहा था, क्योंकि उन लोग को वैष्णव आभूषण से ज्यादा प्रेम नहीं है, लेकिन भूत पिशाच वाला पाषंडी ड्रेस से उन लोग को ज्यादा ही अट्रैक्शन लगा, क्योंकि वही है। तो भूत पिशाच लोग जितने भी थे सब तिलक वगैरह हटा दिए। अब तिलक यानी कि क्या? जो इस प्रकार होता है जिसकी गति ऊपर की ओर है, ऊर्ध्व पुंड्र, इसे कहते हैं तिलक। लेकिन ऐसा कोई तिलक नहीं होता है, ऐसा यानी कि वो हॉरिजॉन्टल यही भटकता रहेगा। अब महादेव ने ये जो भस्म लगाया तो सारे भूत पिशाच भी लगा दिए। अब जब भूत पिशाच जब लगाए, उन लोगों ने वैष्णव आभूषण छोड़ दिए, सब सर्प वगैरह लटका दिए, तो अब आया सुदर्शन और सुदर्शन आकर काम तमाम कर दिया। ये वैष्णव तिलक में इतनी शक्ति है, ये केवल तिलक की इतनी महिमा है कि कोई व्यक्ति इसको केवल आभूषण के रूप में भी पहनेगा तो दुनिया की कोई ताकत क्या सुदर्शन भी कुछ नहीं कर सकता है। यह है भगवान के वैष्णवों का आभूषण का महिमा। तो सोचिए कि भक्ति करेंगे तो क्या महिमा नहीं प्राप्त करेगा। वैसे स्वयं महादेव उन्होंने इस पाषंडी के रूप को धारण किया, तब फिर आगे कहने लगे कि हे देवी, मैंने इसके पश्चात भगवान के दिए हुए आदेश के अनुसार मैंने मायावाद सिद्धांत लिखा। तो स्वयं महादेव का ये सेवा था भगवान नारायण के प्रति। और वो क्या कहते, पद्म पुराण में कहते हैं, मायावादम असत्शास्त्रम प्रचन्नम बौद्धम उच्चते मय्येवा विहितम देवी कड़ो ब्राह्मण मूर्तिना। मायावादम असत शास्त्रम, मायावाद का जो झूठा शास्त्र है उसको मैं स्वयं जाकर रचना किया। किनकी आज्ञा से? नारायण की आज्ञा से, क्योंकि नारायण ने आज्ञा दिया था। अब मायावाद सिद्धांत क्या है? मायावाद सिद्धांत कुछ और नहीं, केवल यही है वो नास्तिक सिद्धांत का दूसरा परिभाषा। जिस नास्तिक सिद्धांत में लोग ये दावा करते हैं कि भगवान नहीं है, नास्तिक सिद्धांत क्या कह दिया जाए, सिद्धांत शब्द ही गलत है। नास्तिक वार्ता करने वाले व्यक्ति जो ये जिस बात को सिद्ध करने का कोई कारण ही नहीं है और वो लोग कहते कि भगवान नहीं है, और जिस बात को स्वयं आदि शंकराचार्य के रूप में स्वयं महादेव उन्होंने ब्राह्मण के रूप को धारण करके इस भौतिक जगत में आकर उन्होंने ये कहा, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान के पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुखमंडल नहीं है, तो कौन है? भगवान निराकार है। अब ये नास्तिक के अलावा और कौन है? ये सबसे बड़े नास्तिक हैं जो ये कहते हैं कि भगवान के पास स्वरूप नहीं है, भगवान निराकार है। अब कैसे नास्तिक है? ये उस प्रकार है जैसे कि एक बार एक राजा था, एक राजा को एक हाथी से बड़ा प्रेम था। तो हाथी से इतना प्रेम था कि राजा ये सोचता था कि इस हाथी का हमेशा रखवाली हो। तो उन्होंने 12 मिनिस्टर को चुने थे और 12 मिनिस्टर को कहा कि इस हाथी की रखवाली अच्छी तरह करना, मगर कोई भी यह संदेश आकर मत देना कि हाथी मर गया। जो आकर ये कहा कि हाथी मर गया उसको मैं सूली पे चढ़ा दूंगा। अब 12 के 12 मिलकर हाथी की इतनी खुशामत की, इतनी उसकी सेवा की, मरेंगे तो फिर हम भी मरेंगे, इसलिए खूब सेवा किया। लेकिन काल के चक्र के अनुसार हाथी का मरण आया, हाथी मर गया। अब प्रश्न चिन्ह हुआ कि कौन सूली पे चढ़ेगा। 12 के 12 लोग चर्चा करने लगे, मैं नहीं जाएगा, तुम जाओ। तो उसमें से एक बुद्धिमान था, उसने कहा ठीक है मैं जाता हूं। तो बुद्धिमान मिनिस्टर गया राजा के पास। जैसे ही राजा के पास गया तो राजा ने पूछा, मेरा हाथी कैसा है? तो यहां पर मिनिस्टर कहता, हाथी एकदम फर्स्ट क्लास है और यूं लेटा है। अरे हाथी है कैसा? अरे मस्त है, उसका हाथ पैर भी नहीं हिलता है। अरे मूर्ख हाथी है कैसा? अरे एकदम मस्त है, उसका कान भी नहीं हिलता है। अरे हाथी है कैसा? उसका पेट भी एकदम स्थिर है। क्या मतलब? हाँ मस्त है, उसके नासिका से हवा भी नहीं जा रहा है। अरे मूर्ख, हाथी मर गया है क्या? मैंने नहीं, आपने ही बोला। तो ये जो कहते कि भगवान निराकार है, जो कहते भगवान भगवान के पास हाथ नहीं है, भगवान भगवान के पास पैर नहीं है, अरे भगवान के पास मुखमंडल भी नहीं है, अरे क्या है भगवान? अरे भगवान के पास कुछ भी नहीं है, अरे भगवान है क्या? नहीं है। मैंने नहीं, तुमने ही बोला। तो जो नास्तिक लोग जो कहते हैं कि भगवान निराकार है, वो वास्तविकता भगवान नहीं है करके वो सिद्ध कर रहे हैं। तो उन लोग कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्य, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, ये सब झूठ है। और आदि शंकराचार्य ने उसी सिद्धांत को आकर लिखे, कौन? स्वयं महादेव ने, महादेव ने इस सिद्धांत को लिखा कि यह जगत क्या है, झूठा है। एक समय की बात थी कि आदि शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर कर जा रहे थे, तो अचानक एक पागल हाथी सामने से आने लगा। तुरंत यहां पर आदि शंकराचार्य ने अगल बगल देखा, एक पेड़ को देख के चढ़ गए ऊपर। अब देखे, अरे गुरुजी भागे तो हम क्या, तो शिष्य भी भागे। अब शिष्य ने भी एक एक पेड़ पकड़ लिया। अब हाथी निकल गया, हाथी निकला तो गुरुजी उतरे तो शिष्य भी उतरे। तो शिष्य ने पूछा, गुरुजी आप ही तो कहते क्या? अब गुरुजी सीना तान के बोल रहे हैं, क्या मैं कहता हूं कि आप कहते जगत झूठा है? बोला हाँ सही है, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? नहीं, तो जगत झूठा है तो ये हाथी भी झूठा था। तो आदि शंकराचार्य कहने लगे, हाँ वो भी झूठा था, तो फिर आप पेड़ में क्यों चढ़े? अभी शिष्य ने लॉक कर दिया गुरु को, तो आपको पेड़ में चढ़ने की क्या आवश्यकता थी? अब गुरु ने भी बढ़िया उत्तर दिया। गुरु ने कहा, वो मैं पेड़ पे जो चढ़ा हाथी झूठ था, और मैं पेड़ पे चढ़ा वो भी झूठ है। तो सब झूठ ही झूठ है। तो वास्तविकता जो मायावाद जो सिद्धांत है, जो कहते हैं कि ये जगत झूठा है, इसके पीछे कोई सामान्य बुद्धि लगाएंगे तो ऐसे लगेगा कोई मूर्खता पूर्वक बात कर रहे हैं। ये मूर्खता पूर्वक प्रस्ताव है कि जो ये कहता है कि जगत झूठा है। और वैसे सिद्धांत को यहां पर आदि शंकराचार्य ने, स्वयं महादेव ने इस भौतिक जगत में कलो ब्राह्मण मूर्तिना, इस कलयुग में आकर उन्होंने इस सिद्धांत की रचना की। उसका मुख्य हेतु क्या था कि लोग, जितने भी नास्तिक लोग हैं, सब एकत्रित हो जाए, और ये महादेव का मुख्य सेवा था। तो प्रश्न ये उठता कि महादेव ने ऐसे लोगों को दिग्भ्रमित क्यों किए? वो दिग्भ्रमित इसलिए किए क्योंकि ये जितने भी नास्तिक लोग थे, ये भगवान के भक्तों को, वैष्णवों को परेशान कर रहे थे। तो इन लोग आगे जाकर परेशान न करें, वैष्णव लोग भगवान की भक्ति ठीक से कर पाए, उनके लिए मैदान तैयार किया ये मायावाद सिद्धांत लिखकर। इसको आप इस उदाहरण से समझ सकते हो। जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। इसको आप इस बात से जान सकते हो कि जैसे कि मान लो कि कोई बिल्डर बिल्डिंग बना रहा है, लेकिन वो बिल्डिंग बनाने के साथ साथ में उसी बिल्डिंग में बहुत से कबूतर लोग आकर पेट कर उस बिल्डिंग को गंदा कर रहे, अपना मल त्याग कर वो बिल्डिंग ही खराब कर रहे। तो एक कबूतर लोग आके परेशान कर रहे, तो उस कबूतर के परेशानी से बचने के लिए बिल्डर क्या करता है, उसी बिल्डिंग जो बन रहा है उसके सामने एक दूसरा एक चबूतरा बनाता है, और उस चबूतरे में आकर उनका मुख्य उद्देश्य है कि सारे के सारे कबूतर उसमें आकर बैठकर जो करना हो करें, और यहां पर ये बिल्डिंग सुरक्षित रहे। वैसे ही जितने भी नास्तिक लोग हैं, ये सब कबूतर के समान हैं, जो भगवान के भक्तों को वैष्णवों को परेशान करते हैं, तो इन लोगों के झुंड को बांधने के लिए एक मायावादी सिद्धांत रूपी चबूतर बनाकर दे दिया, ताकि वहां पर जितने भी नास्तिक लोग हैं वहां बैठकर जो करना हो करें। तो इसलिए जितने भी नास्तिक लोग हैं उसका सब एक झुंड बन गया, अब भक्त लोग यहां से सुरक्षित पूर्वक भक्ति कर सके। तो ये उद्देश्य है कि किस प्रकार महादेव का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि कैसे एना केना प्रकारेना सभी लोग भगवान की भक्ति में लग पाए। गुजरात में एक बहुत बड़े प्रसिद्ध भक्त हुए जिनका नाम था नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता ने महादेव की खूब भक्ति की, उनको अनन्य भाव से उनकी भक्ति की, और भक्ति करके महादेव को प्रकट करा दिया। महादेव ने कहा क्या बात है, क्या चाहिए, मांगो। नरसिंह मेहता ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मुक्ति चाहिए। महादेव ने कहा तुम मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, मुक्ति चाहिए तो मुकुंद का भजन करो, मुकुंद ही तुम्हें भक्ति मुक्ति दे सकता है। और ऐसे कहकर वहां से महादेव निकल पड़े, और तब से नरसिंह मेहता ने स्वयं महादेव के आज्ञा को प्राप्त करके उन्होंने महादेव की भक्ति को छोड़कर फिर भगवान कृष्ण की भक्ति शुरू कर दी। तो ये इतिहास में ऐसे उदाहरण हमें क्यों दिखाई देते हैं, इस उदाहरण से हम ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि भक्ति केवल कृष्ण की होती है, बाकी सबको हम आदर सम्मान देकर उनसे प्रार्थना ये कर सकते हैं कि हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करो, क्योंकि स्वयं देवी देवताओं के द्वारा भी जो वर प्राप्त होता है, भक्ति के अलावा जो कुछ और वर प्राप्त होता है, कृष्ण भक्ति के आशीर्वाद के अलावा और जो भी कुछ वर प्राप्त होता है वह हमारे लिए जानलेवा बन जाता है। जैसे कृष्ण लीला में एक कथा आती है, एक वर्णन आता है भस्मासुर का। ये भस्मासुर जो थे महादेव के बड़े भक्त थे, और महादेव का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष यानी कि वो जल्दी प्रसन्न भी होते और जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो यहां पर भस्मासुर ने आशुतोष को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हवन किए, जिस यज्ञ हवन में उन्होंने अपनी जंगा काट कर जंगा आहुति में दे रहे थे, फिर भी महादेव प्रकट नहीं हुए। तो प्रकट नहीं हुआ तो अंत में वो अपने शीश को काट के अग्नि में डालने जा रहे थे, तो महादेव ने कहा बस मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो इन्होंने कहा अब महादेव अकेले नहीं आए थे, महादेव अपनी अर्धांगिनी के साथ आए थे। तो भस्मासुर ने देखा और कहने लगे, ये विचार करते हुए ये उन्होंने ये विचार किया कि पार्वती तो बड़ी सुंदरी है, लेकिन मेरे रास्ते का काटा है महादेव है, अब इसको हटाऊंगा तो पार्वती मेरी। तो उन्होंने कहा अपने मन ही मन में एक विचार कर लिया कि बस अब महादेव को रास्ते से हटाना है। तो उन्होंने कहा हे महादेव, मुझे आप ऐसा वर दो कि जिस व्यक्ति के सर पे हाथ रखूं उसका सर फट जाए, वो भस्म हो जाए। अब देखो कुछ लोग तपस्या भी करते तो यही या असुरिक तपस्या ऐसी ही रहता, भयंकर तपस्या करते, लेकिन उद्देश्य क्या है, दूसरे को परेशान करना। अपना एक टांग टूटेगा तो चलेगा, पड़ोसी का दोनों टूटना चाहिए तब सुकून मिलता है, कुछ मजा आया। तो वैसे यहां पर भस्मासुर ने इस वर को मांगा, महादेव भोलेनाथ उन्होंने कह दिया तथास्तु। तथास्तु जैसे ही कहा तो भस्मासुर ने कहा फर्स्ट आई कैक ऑन यूर हेड, पहले मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के परीक्षण करूंगा कि तुम्हारा आशीर्वाद सही है क्या गलत है। अब महादेव बोले अरे मेरे सर पे, अरे नहीं नहीं नहीं, तो आप महादेव को और कोई चारा नहीं, भागे। भस्मासुर पीछे, महादेव आगे। अब भाग रहे तो अब महादेव के पास और कोई चारा नहीं था, वो मन ही मन में जब भी भक्त संकट में होते हैं तो कौन उसकी रक्षा करते हैं? स्वयं भगवान, स्वामी उनकी रक्षा करते हैं। अब यहां पर नारायण समझ गए कि मेरा भक्त बड़े विकट स्थिति में पड़ा है, तो स्वयं नारायण ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और मोहिनी रूप धारण करके जंगल के बीचों बीच खड़ी हो गई। अब महादेव भागे, उसके बाद मोहिनी, और यहां पर पीछे भस्मासुर, भस्मासुर का एकाएक नजर पड़ा मोहिनी पर, देखते ही मोहित हो गए। अब यहां पर मोहिनी ने पूछा, तुम किसके पीछे भाग रहे हो? तो भस्मासुर कहने लगा, मैं वो महादेव के पीछे भाग रहा हूं। अरे छोड़ो, उसके घर बार का ठिकाना नहीं है, पीछे भाग के क्या मिलने वाला है? ना वो भी बात सही है, मगर तुम भी कम सुंदर ही नहीं हो। अब यहां पर भस्मासुर ने अपना विवाह का प्रस्ताव दिया और कहने लगे, क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी? तो मोहिनी ने कहा कि मेरा तो एक शर्त है, मैं उसी से शादी करूंगी जो मेरे जैसा नाचता है। तो भस्मासुर ने कहा, बस तुम जैसे नाचो मैं वैसे नाच के दिखाऊंगा। तो अब मोहिनी कभी ऐसे करती तो भस्मासुर भी ऐसे करता, तो ऐसे करती था ऐसे, तो ऐसे करते करते एक स्टेप कर दिया ऐसे, तो फिर पता है क्या हुआ, वो खुद ही भस्म हो गया। तो अब महादेव को जान में जान आई, अब बच गए। तो महादेव को सुराई पड़ा कि भगवान ने मेरी रक्षा की मोहिनी अवतार धारण करके। तो महादेव ने ये निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया कि हे नारायण, मुझे आपका मोहिनी रूप दिखाओ। नारायण ने कहा, देखो तुम धीर पुरुष के रूप में जाने जाते हो, उसी रूप में रहो, मेरा मोहिनी रूप मत देखो। नहीं ना, मुझे देखना है। महादेव, अपना नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? तुम बदनाम हो जाओगे। बोला, नहीं कुछ भी हो, मुझे आपका मोहिनी रूप देखना है। जब ज्यादा हट कर दिए तब मोहिनी ने, नारायण ने कहा, ठीक है संभालो अपने आप को। अब तुरंत ही वहां पर नारायण ने मोहिनी का रूप जैसे ही दर्शन दिया, अब महादेव लड्डू हो गए, अब लगे मोहिनी के पीछे भागने। अब मोहिनी के पीछे और कोई रास्ता नहीं, अब वो भी भागी। तो पहले तो भस्मासुर महादेव के पीछे लगा था, अभी महादेव मोहिनी के पीछे लगा, अब कौन बचाए? लेकिन वहां पर मोहिनी अव्यक्त हो गई, तो अव्यक्त हो गई लेकिन महादेव के हृदय से ही एक पुत्र, एक संतान उत्पन्न हुआ, जिस पुत्र का नाम है मानस पुत्र, जिसे अय्यप्पा के रूप में प्रसिद्ध है। आज भी दक्षिण भारत के लोग, कुछ लोग अन्य लोग भी दक्षिण भारत में जाते हैं, शबरीमला में 40 दिन का व्रत कर अय्यप्पा का दर्शन करने। और ये केवल महादेव के मन से उत्पन्न हुआ पुत्र है, जिसे कहते हैं मानस पुत्र। आप लोग ने देखा होगा जो काले काले कपड़े डालते हैं और जो कहते हैं स्वामी शरणम अय्यप्पा, ऐसे कहने वाले हैं। तो ये 40 दिन का व्रत करके अय्यप्पा का दर्शन करने जाते, वो अय्यप्पा कोई और नहीं, स्वयं महादेव के हृदय से उत्पन्न हुआ पुत्र है। तो यहां पर शिक्षा क्या है कि स्वयं महादेव तक भगवान के माया रूप से मोहित हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये निकलता है कि महादेव भी भगवान के अधीन है, महादेव नारायण से स्वतंत्र नहीं है, भगवान पर निर्भर है। और इससे हम ये दावा कर सकते कि कैसे स्वयं महादेव भगवान की सेवा में, और सेवा करने कारण उनका नाम वैष्णव नाम यथा शंभू पड़ा, सबसे बड़े सेवक परम वैष्णव महादेव। जैसे इनका मुख्य जो सेवा जो है, भगवान के कृष्ण के लिए वो है दिक्पाल के रूप में। जहां कहीं कृष्ण का मंदिर है उसी के आसपास में स्वयं महादेव स्वयं अपने शिवलिंग के रूप में विराजित हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। जैसे वृंदावन में मुख्य चार शिवलिंग है, मथुरा में भूतेश्वर के रूप में जाने जाते हैं और वृंदावन में गोपीश्वर के रूप में जाने जाते हैं, क्षेत्रपाल के रूप में, जो जिसे कहते हैं अधिकपाल। तो वो क्षेत्रपाल किस प्रकार उनका नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव, एक समय की बात थी कि महादेव के हृदय में ये आकांक्षा हुई कि मैं भी भगवान कृष्ण के रासलीला में प्रवेश करूं और रासलीला में मैं भी थोड़ा देखूं नजारा कैसे चल रहा है। तो इच्छा बड़ी आकांक्षा थी और ऐसे बड़ी आकांक्षा लेकर जब जाने लगे तो वहां पर जो द्वारपाल में जो खड़े थे गोपियागण, उन्होंने कह दिया नो एंट्री, अंदर केवल एक ही पुरुष रह सकता है, वो है कृष्ण, दूसरा पुरुष को एंट्री नहीं है। अब ये सुनकर महादेव बड़े हताश निराश हो गए। जब लौटकर जब दोबारा आ रहे थे तो अब नारद मुनि भेंट कर दिए। अब नारद मुनि मिले तो उनके पास सारे प्रश्न का उत्तर है। तो उन्होंने कह दिया क्या हुआ महादेव, क्यों इतने चिंतित हो? बोले ऐसी ऐसी बात है। बोले बस मेरे पास एक तरकीब है। बोले अच्छा क्या है? बोले मैं एक मंत्र जप करूंगा जिस मंत्र से तुम पुरुष या स्त्री बन जाओगे, चलेगा? महादेव ने कहा कुछ भी चलेगा। मैं सारी कीमत को भरने को तैयार हूं, मुझे रासलीला में प्रवेश करा दो। बोले ठीक है। अब उन्होंने उनको ऐसा मंत्र जप किया जिस मंत्र से अब महादेव से गोपी बन गई। अब गोपी बन गई तो अब वो गोपी बनकर जाने लगी। अब जो राजमंडल में प्रवेश मिल गया उसे, अंदर तो कैसे पहुंच गए, और जो अंदर घुस गई तो अन्य गोपी लोग ये देखने लगे कौन सी नई गोपी है, और काल भी बड़ा बड़ा था, लाल मटोर था, सब लोग गाल खींच खींच के एकदम लाल कर दिए। अब वहां महादेव कुछ नहीं कर सकते, केवल सबका डांट खाते खाते अब फिर बाद में किसी को शक हुआ, अरे तो महादेव है, यहां कैसे आ गए? फिर सारे गोपियों ने ऑब्जेक्शन लिया इसे यहां से बाहर करो। फिर कृष्ण आकर कहने लगे देखो महादेव, हमारे इस रंग में भंग हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि तुम नहीं रहो, तुम बाहर रहो, क्योंकि गोपियों का ऑब्जेक्शन है तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन मैं तुम्हें सेवा देता हूं कि इसी रासमंडल को रखवाली करने के लिए तुम गोपीश्वर महादेव के रूप में विराजित हो जाओ। तो आज भी आप वृंदावन में गोपीश्वर महादेव का दर्शन कर सकते हो। जो गोपीश्वर महादेव को जहां पर साड़ी से, चूड़ियों से, कुंकुम से उनको श्रृंगार किया जाता है और इस तरह उनकी उपासना करते वृंदावन में गोपीश्वर महादेव, और महादेव का नंदगांव में उनका नाम है नंदीश्वर महादेव, तो वहां पर कैसे आए? तो वहां पर ऐसे वर्णन आता है कि महादेव के हृदय में यह इच्छा हुई मैं भी जाकर बाल गोपाल कृष्ण का दर्शन कर सकूं, और ये आकांक्षा से महादेव अपनी तपस्या के स्थान से उतरकर वृंदावन में आए बाल गोपाल कृष्ण का दर्शन करने। और उन्होंने कहा कि मुझे यशोदा मैया को आकर कहने लगे कि मुझे आपके बाल गोपाल का दर्शन करा दो। यशोदा मैया तो पहले ऊपर से नीचे देखी, बाप रे सर को बिच्छू वगैरह लटका है, ये कौन सा झटा इतना बड़ा पहन के आया है, मेरे बालक इतना छोटा मासूम है इसे देख के डर जाएगा। उन्होंने बोला कोई दर्शन नहीं होगा, कुछ दक्षिणा चाहिए तो लो और जाओ। अब यशोदा मैया ने तो नकार दिया, नकार दिया, तो अब महादेव निराश होकर वहां से चल पड़े। बोले मेरा भाग्य नहीं है। मगर मन ही मन में उन्होंने निकट में ही जाकर इस पद्मासन पर बैठकर उन्होंने गोपाल का दर्शन करने लगे अपने हृदय से। अब गोपाल जो कि स्वयं अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं कि कौन आया है, उन्होंने अब जैसे ही जान गए तो अब यहां पर बाल गोपाल कृष्ण इतने जोर से रोने लगे जिसके रोने धोने को सुनकर अड़ोस पड़ोस की गोपियां भी आ गई। सभी तरह से उनको शांत करने का प्रयास कर रहे, सारा प्रयास विफल जा रहा, कोई चुप ही नहीं कर पा रहे। तो अंततः गत्वा एक गोपी थोड़ी विद्वान थी, उन्होंने ये पूछा कि आपने किसी अतिथि का अपमान किया? बोला हाँ, एक आया था कोई जोगी बाबा, वो कह रहा था कि आपके गोपाल का दर्शन करा दो, मैंने तो मना कर दिया। बोला हाँ, वही कारण से रो रहे, जाओ उनको बुला के लाओ। अब यशोदा मैया भागते भागते हताश परेशान होकर खोजते हुए उन्होंने ढूंढ लिया महादेव को और कहने लगे, बाबा जी आप आइए और मेरे गोपाल का दर्शन करिए, वो बहुत रो रहे। तो महादेव बड़े खुश, लवा अब उमंगे जाग गई और तीव्र से दौड़ते हुए भाग के आए। अब जब भाग कर आए और गोपाल जी को भी, बाल गोपाल कृष्ण को भी उनके समक्ष रखे, और जैसे ही रखे बाल गोपाल के सामने, महादेव ने अपना हस्त कमल जोड़कर अपने मस्तक को झुका दिया और बाल गोपाल कृष्ण ने अपने चरण कमल को महादेव के मस्तक पर रख दिया और उनको आशीर्वाद दिए और मन ही मन में इतने आनंद का उल्लास छा गया महादेव के हृदय में। और फिर तब जाकर यशोदा मैया को समझ आ गया कि ये कोई हो और हो ना हो, ये स्वयं महादेव है, वो समझ गए। तब यशोदा मैया ने निवेदन किया कि ये महादेव आप यहां तक तो आए मेरे बाल गोपाल कृष्ण का दर्शन करने, तो क्यों नहीं आप यहीं रहे, थम जाते हो? क्योंकि कंस रोज कुछ ना कुछ असुर को भेजता है और उस असुर से तो मैं बड़ी परेशान रहती हूं कि कहीं मेरे बाल गोपाल को कुछ हो ना जाए, इसलिए आप यहीं रखवाली करो मेरे बाल गोपाल का। तो महादेव ने कहा ठीक है, मंजूर है, सेवा मंजूर है, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। क्या शर्त? यह है जो कुछ गोपाल को पहले खिलाया जाएगा वो खिलाने के बाद उसी भोग को मुझे प्रसाद के रूप में दीजिए। इसलिए आज भी नंदगांव में नंदीश्वर महादेव को, गोपाल जी को जो भोग लगता है वो भोग प्रसाद जो बनता है उस प्रसाद को महादेव को पहले खिलाया जाता है। ऐसे आप जगन्नाथपुरी में भी देखिए, जगन्नाथपुरी में भी जो जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है वो भोग लगने के बाद महादेव को भोग लगता है। इससे ये पता लगता है कि किस प्रकार स्वयं महादेव वो भगवान कृष्ण या भगवान जगन्नाथ जी के भक्ति में आतुर है और हमें महा महा प्रसाद प्राप्त होता है। और वैसे महादेव नंदगांव में नंदीश्वर महादेव के रूप में जाने जाते हैं। और गोवर्धन के तट के यहां पर भगवान शिव जी वो चक्लेश्वर महादेव के रूप में जाने जाते हैं। अब वहां पर इस प्रकार की लीला घटी कि स्वयं सनातन गोस्वामी वो साहित्य की टीकाओं को रचना कर रहे थे तो वहां पर संध्या समय पर इतने मच्छर सताने लगे कि मच्छर से परेशान होकर सनातन गोस्वामी ने यह विचार किया कि इस स्थान को मैं छोड़कर कहीं अन्य स्थान पर चला जाऊं, क्योंकि मच्छर बड़े परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे सोचकर उन्होंने जब उस स्थान छोड़, जैसे ही वहां से निकलने का जब शुरुआत किया तो भगवान महादेव प्रकट हो गए और कहने लगे, ठहर जाओ हे गोस्वामी, आप स्वयं भगवान कृष्ण के भक्त, और मेरा कर्तव्य बनता है कि भक्तों की सेवा करना। तो आप इस स्थान को छोड़ के क्यों जा रहे हो, क्या कारण है? तो कहा कि बहुत मच्छर सता रहे, मैं जा रहा हूं। बोले नहीं, आज के बाद तुम्हें एक मच्छर नहीं सताएंगे, आप यहीं बैठे रहो। और फिर महादेव ने मच्छरों के अधिष्ठाता देवताओं को बुलाया। तो हर एक का पर्सोनिफाइड डीटी है, मच्छरों का भी है एक। तो उन्होंने कहा आज के बाद इधर एक मच्छर नहीं दिखना चाहिए, तुम्हारी सारी सेनाओं को बोल देना यहां से जगह खाली करने। और उन्होंने महादेव के आज्ञा को सर आंखों में मानकर आज तक वहां पर एक मच्छर नहीं दिखते हैं। और वो स्थान प्रसिद्ध हो गया चक्लेश्वर महादेव। तो मैं हाल ही में कुछ दिन पहले कमलोचन प्रभु से बात कर रहा था, प्रभु जी यहां भी बड़े मच्छर सता रहे। तो मैं यही कह रहा था यहां के भक्तों की सेवा के लिए चक्लेश्वर महादेव का एक स्थापना करना पड़ेगा, ताकि सारे जितने भी मच्छर है वो सब भाग जाए, और भक्त लोग अच्छी तरह नाम संकीर्तन में अपने आप को जोड़ सके। तो वैसे स्वयं महादेव वो भगवान की सेवा में अलग अलग तरीके से लगे हैं। तो मायावाद में आदि शंकराचार्य के रूप में, और दिक्पाल में इस प्रकार चक्लेश्वर, भूतेश्वर, गोपेश्वर, नंदेश्वर इस रूप में, और स्वयं वो सारे बद आत्माओं को भी स्वयं उनके कानों में राम का नाम जप कर उनको मोक्ष दिला रहे हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो?
भगवान शिव का भजन करने वाला भगवत धाम जा सकता है?
अच्छा, प्रभु जी का प्रश्न है, प्रभु जी का यह प्रश्न है कि भगवान शिव के भजन करने वाले भगवत धाम जा सकते हैं क्या? नहीं, भजन तो केवल कृष्ण का होता। हाँ, तो ये चार संप्रदाय में रुद्र जो संप्रदाय है वो रुद्र संप्रदाय आता है महादेव से, और स्वयं महादेव कहते हैं कि भजन केवल कृष्ण का करना चाहिए, नारायण का करना चाहिए। तो अगर कोई महादेव के प्रति अगर कोई समर्पण रखता है तो इस भावना से रखना चाहिए कि महादेव स्वयं कृष्ण के सेवक है, ऐसी भावना से अगर उनके शरणागति को स्वीकारते हैं तो उत्तम है। तो शरणागति किस भाव से होना चाहिए महत्वपूर्ण है। रावण ने भी महादेव का भजन किया, लेकिन दशा क्या हुआ? तो उसकी दशा हुई। इसलिए मैं कभी भी लोगों को यह बात कहता हूं कि हम अगर कोई ये कहता है कि मैं महादेव का भजन करना चाहता हूं तो ठीक है, आप भूतकाल में देखिए महादेव के उपासक सबसे बड़े थे और रावण अपने मस्तक को भी काट के देने को तैयार थे, लेकिन रावण का इतना बड़ा भक्ति, इतना बड़ा भजन महादेव के प्रति, परिणाम क्या हुआ? मृत्यु। स्वयं महादेव भी उसे बचा नहीं पाए। तो अगर कोई ये सोचता है कि मैं महादेव का भजन करूं, तो आप ये सोच लीजिएगा कि रावण जैसा भक्ति ना भूतों ना भविष्य कोई कर पाएगा। तो इससे क्या शिक्षा मिलता है? भजन केवल एक ही का होता है, वो है राम का, अन्य देवी देवताओं का भजन नहीं होता, लेकिन आदर सम्मान होता है। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि कलयुग में हम देखते हैं कि शिव जी के भक्त लोग ज्यादा दिखते हैं कृष्ण भक्त से, ऐसे क्यों? उसका मुख्य कारण यह है कि भगवान कृष्ण का भजन वही कर सकता है जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य अर्जित किया है। इसलिए कहा गया है भवनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सहम आत्मा सुदुर्लभा, विरलज ही कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के शरणागति को स्वीकारता है और वैसा पवित्र पुण्य आत्मा मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और कोई प्रश्न? कहां से आवाज आया? प्रभु, हाँ यश प्रभु जी, महादेव बजरंग बली के रूप में कैसे आए? हाँ हाँ, उनको वायु पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। स्वयं महादेव चाहते थे कि मैं प्रभु रामचंद्र जी की लीलाओं में सेवा करूं, और इसीलिए उन्होंने हनुमान के रूप में प्रकट हुए। तो ये उनके अंश के रूप में वो प्रकट हुए हैं। और इसका विस्तार जो कथा है कि किस प्रकार वो हनुमान का प्राकट्य कैसे हुआ, तो ये अब हमारा विषय भी नहीं है, समय भी बड़ा कम है, तो हम ये हनुमान जयंती में चर्चा करें। हरे कृष्ण, महादेव की
जय,
श्री प्रभुपाद की
जय,
अब महाप्रसाद की
जय।
और